الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رمضان المبارك کی یہ آخری رات چل رہی ہے، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ ایک عام رات ہوگی، رمضان کی نہیں ہوگی. بہت ہی کم لوگ تب بھی ان مبارک گھڑیوں کو سیریس لیتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس رات تک صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اکثریت کا ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ 27ویں کے بعد ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، گویا ختم قرآن کے ساتھ ہی رمضان بھی ختم ہو گیا. کوئی بہت ہی خود کو گھسیٹ لیں تو 29ویں پہ لے جاتے ہیں، مگر اس کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عبادت میں اپنا دل لگاتے ہیں، اس رات کو بھی قیمتی سمجھتے ہیں، جو اس کے لیے جاگتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں، مہمان جب رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جب جانے والا ہوتا ہے، تو بلکہ اس کو وقت زیادہ دیا جاتا ہے کہ پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو نہ ہو. حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہیں تو لوگ وہاں تک چھوڑ کے آتے ہیں مسافر کو، جہاں آخری حد ہے، اور وہاں سے بھی ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں جب تک کہ مہمان نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے. اور ہم رمضان کا کیا اکرام کرتے ہیں کہ ابھی تو وہ رخصت ہوا بھی نہیں اور ہم پہلے ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حتیٰ کہ جو لوگ قرآن کریم کو ایک دفعہ ختم کر لیتے ہیں ان راتوں میں، اس کے بعد وہ یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہم دوبارہ کو قرآن کو کھول لیں. بس اب ختم ہو گیا تو بس ہو گیا، اب اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. تو اپنی محنت کو آخری ٹائم تک کریں، بلکہ جب تک رمضان المبارک کا سورج غروب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ بابرکت وقت ختم نہیں ہوتا. اس وقت تک آپ اپنی نیکیوں میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں. جاتے جاتے وقت میں بھی، افطار سے پہلے پہلے بھی، اس وقت کو قیمتی جانیے کہ اب تو یہ جا رہا ہے اور یہ آخری افطار ہے، یہ آخری روزہ ہے اس رمضان کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سے رمضان ہم سب کو دکھائے، مگر کیا وہ یہ رمضان ہوں گے؟ نہیں، وہ الگ ہوں گے، وہ اس سال کے ہوں گے، یہ تو دوبارہ نہیں آئے گا نا. تو لہٰذا اس کو قیمتی سمجھیے، اور جیسے یہ رات ہے، یہ آخری رات ہے رمضان کی، اب دوبارہ تھوڑی یہ رات آئے گی. جہاں اتنے دن محنت کی، وہاں آخر کے کچھ دن اور سہی. کبھی یہ نہ سوچئے کہ رمضان 27ویں کے ساتھ مکمل ہو گیا یا 29ویں کے ساتھ. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. سب نے کافی محنت کی اپنی اپنی ہمت کے مطابق، جیسی تیسی بھی جو بھی کر سکا، کوشش یقیناً سب نے کی ہے، اور اب ضرورت ہوگی کہ ہم اس کو محفوظ بھی کر لیں. یعنی یہ نہ ہو کہ جو کر لی ہے اس کے اوپر اپنے ہی کسی عمل سے پانی پھیر دیں اور اس کو ضائع کر دیں. تو بہت زیادہ اس دعا کو بھی کرنا ہے، ربنا تقبل منا. اسی طرح جب عید بھی آتی ہے تو اس وقت بھی صحابہ ایک دوسرے سے عید ملتے تھے تو تقبل اللہ منا و منکم بھی کہتے تھے، اللہ ہم سے بھی قبول کرے اور آپ سے بھی کرے. تو بہت فکر ہونی چاہیے کہ یا اللہ اب قبول کر لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عورت کی مثال دی ہے کہ جو سوت کاتتی ہے اور کات کے پھر اپنے ہاتھ سے سارا کھول دیتی ہے. جیسے اب آپ کو سوت کا کیا پتا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا عورتیں کروشیا کرتی ہیں یا سویٹر بنتی ہیں، تو سوچیں ایک عورت پورا سویٹر بن کے اس کے بعد سارا کھول کے اس کو ادھیڑ کے دوبارہ وہ اون کا گولا بنا دے، कितनी मेहनत उसने की, सारी खुद ही अपने हाथों से जाया कर दी। तो ऐसी औरत की एक मिसाल दी गई है, ध्यान रखिएगा, कहीं ये मिसाल अल्लाह ना करे हमारे पर पूरी ना आ जाए कि रमजान का जब सूरज गुरूब हुआ और हम ऐसे हो गए जैसे कि कभी रमजान आया ही नहीं था हमारी जिंदगी में, या कभी हम अपने गुनाहों के ऊपर रोए ही नहीं थे, कभी गिड़गिड़ाए नहीं, कभी दुआएं नहीं की या अल्लाह अब हमें माफ कर दे, भूल गए सब कुछ, भूल गए, कभी नेकी के कामों के अजम ही नहीं किए, इरादे ही नहीं किए, वापस जीरो पे चले गए। होना ये चाहिए कि अगर रमजान में अल्लाह ताला से करीब होने के लिए आपने दो कदम भी उठाए हैं ना, तो रमजान के बाद एक तीसरा कदम उठाना है, वापस जीरो पे नहीं चले जाना। जो वादे किए हैं उनको याद रखना है, जो नेकी करने की नियतें की हैं, जैसे आप सबने यकीनन ये नियत भी की होगी कि अल्लाह ताला अब हम कुरान के साथ जुड़े रहेंगे, ये वो नेमत, ये वो लज्जत हमने पाई है अल्लाह तेरे कलाम के साथ, अब हमें तू रखना कि सिर्फ ये रमजान तक का ना हो बल्कि उसके बाद भी जारी रहे। तो ये जो आपने नियत की है इसको भी भूलना नहीं है। आप देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना कि अहलुल कुरान जो हैं वो अल्लाह ताला के खास बंदे हैं, और अल्लाह ताला ने हामिल कुरान की ताजीम को अपनी ताजीम करार दिया कि जो कुरान वाला है ना, जो कुरान जिसकी जिंदगी के अंदर है, शामिल है, वो उसके ऊपर चलता है, अमल करता है, उसको समझता है, उसको पढ़ता है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो उसकी इज्जत ऐसे है जैसे आप अल्लाह ताला की इज्जत कर रहे हैं। ये मामूली बात है क्या? और इस जिंदगी में भी कुरान की दौलत अल्लाह ताला इंसान को शर्फ और मर्तबा अता फरमाता है, और जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो कब्र में भी कुरान उसके साथ रहता है और उसको अकेला नहीं छोड़ता, हत्ता कि जब कयामत कायम होगी तब भी कुरान अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वहां पे भी अल्लाह ताला के आगे खड़ा होकर इंसान की सिफारिश करता है। ये हमें हदीस से पता चलता है, अल्लाह ताला के से आगे झगड़ता है कि मैं इस बंदे को जन्नत में लेकर जाऊंगा, ये मुझे पढ़ता था, ये मेरे साथ वक्त गुजारता था, इसने मुझे इमाम बनाया था, मुझे फॉलो करता था। और आपको पता है जन्नत को आप देखें तो उसके अंदर कोई अमल नहीं जा रहा। कभी आपने सोचा कि जन्नत में ना नमाज जाएगी, ना रोजा जाएगा, ना हज जाएंगे, सब बाहर रह जाएंगे, मगर ये सिवाय कुरान के अल्लाह ताला हामिले कुरान से फरमाएगा कुरान पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा, और जैसे तू दुनिया में पढ़ता था वैसे ही पढ़ता जा चढ़ता जा, और जहां तेरा कुरान खत्म होगा वही तेरी मंजिल होगी। अंदाजा कीजिए इससे हामिले कुरान की कितनी बड़ी इज्जत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है यौम यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, हाँ, इंसान उस दिन याद करेगा, लेकिन अब याद करने का क्या फायदा, वो कहेगा यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, वो कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। तो ऐसे पछतावों से बचने के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी इस जिंदगी को समझदारी के साथ गुजारे, वरना आखिरत में सिवाय पछतावों के कुछ नहीं होगा। फिर इंसान चाहेगा भी कि वापस जाके अपना कुछ बदल लूं, इन नेकी के कामों को कर लूं, नहीं कर सकेगा। तो कुरान को अपना साथी बनाइए, इन लोगों में से ना हो जाए जिन जो वहां पे हसरतें करते रहे, वहां पे जाके याद करें। अब अल्लाह ताला फरमाता है अब याद करने का क्या फायदा, उस दिन इंसान याद करेगा वह अन्ना लहू दिक्र, अब क्या फायदा याद करने का, जब चिड़ियां चुग गई खेत तो इंसान रोता फिरे तो क्या फायदा, फिर बताएं जिंदगी हाथ से निकल चुकी होगी उस वक्त। तो लिहाजा याद रखना है कि मैंने क्या इरादे किए, मैंने क्या प्रोग्राम बनाए, ये तो नहीं कि आज जज्बात के अंदर कुछ कह दिया और उसके बाद याद ही नहीं है कि मैंने कहा क्या था, कोई इरादा भी किया था गुनाह से बचने का, नेकी पे चलने का, अल्लाह ताला से कुर्ब का, कुछ प्लान किया, कुछ चेंज का सोचा, तो इन चीजों को याद रखना है। हमारे कोर्सेज का लिंक भी आपके पास आ गया होगा, आप जरूर इसको क्लिक करें, जरूर कुरान के साथ जुड़ जाइए। ये इससे क्या फायदा होगा कि आप इधर उधर नहीं होंगे, वरना रमजान के बाद सब सबक भूल जाएगा। कुरान है जो हमें सीधा रखता है, जो हमें थाम के रखता है। मैं तो पढ़ाती हूँ ना, तो मैं खुद आपको कहती हूँ कि अगर कुरान जिंदगी में ना हो तो पता नहीं किधर भटक रहे हैं। ये सबको सीधा रखने वाला है। हम में से कोई कामिल नहीं, कोई नेक पारसा नहीं। कुरान ना हमारा हमारे साथ हो तो हम तो पता नहीं किधर से किधर निकल जाएं। और अभी भी कुरान को उतना वक्त नहीं हम दे सकते जितना के देना चाहिए। इसीलिए फिर जिंदगी के अंदर बहुत सारी कमियां, बस कोशिशें हैं। तो आप भी कोशिश करें, एक कदम जरूर उठाइए और इस चीज को कभी ना सोचे कि कैसे होगा। आप ये कहिए, ए अल्लाह मेरा काम नियत करना था और कदम उठाना था, बाकी चलाना तूने है, तो अल्लाह ताला चलाएगा फिर। और ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमजान के बाद भी, बाकी लोगों के और खुशियों के त्योहार होते होंगे, कोई कुछ किसी तरह करता है, कोई किसी तरह, आपने देखा हो दूसरे रिलीजन्स में, लेकिन सुभान अल्लाह जो हमारा खुशी का दिन है जिसको ईद का दिन कहा जाता है, कैसे शुरू होता है? अल्लाह की याद से, तकबीरात के साथ, अल्लाह की बड़ाई बयान करने से। यानी हमारा ये नहीं है कि हमने रमजान खत्म कर लिया तो बस सब भूल गए, रमजान खत्म हुआ तो हमारा, जैसे एक हमने एक कपड़े पहने हुए थे बड़ी नेकी के और दीनदारी के, जूं ही रमजान खत्म हुआ आप कपड़े उतार के फेंके, अब अगले साल पहनेंगे, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। बल्कि हमारे दीन के अंदर खुशी में भी अल्लाह की याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग मुसलमान हुए थे कि तुम साल में 2 दिन खुशी मनाया करते थे। पहले होता था जो पेगन्स में, मुशरिकीन में, इस तरह के उनके खुशी के अपने कोई दिन होते होंगे, तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे उन दिनों के बदले उनसे बेहतर 2 दिन तुम्हें दिए, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। यानी ये दिन किसने दिए? अल्लाह ताला ने। हम एक तो होते हैं ना हमारे अपने दिन, जैसे शादी का दिन हो गया, या कोई आप बच्चा जिस दिन पैदा हुआ वो दिन आपके लिए खुशी का हो गया, कोई बच्चा पास हुआ है वो खुशी का दिन हो गया, वो आपके अपने पर्सनल हैं। लेकिन एक है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अल्लाह की तरफ से है, तो इस दिन ई खुशी मनाना ये भी अल्लाह की रजा में राजी होना है कि उसने मुझे खुशी का दिन दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब हमारा क्या अक्सर होता है, खास तौर पे हम लोग जो गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं, ईद को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इवन आप तो मुसलमान मुल्कों में भी ये हालात हो गए कि ईद बोरिंग। क्यों बोरिंग? जो अल्लाह ने खुशी का दिन दिया वो हमारे लिए बोरिंग है, और जो हमने खुद ही बनाए हुए, किसी की सालगिरह का दिन हो जाए फिर देख लें कैसे उधम मचाते हैं, या कोई और उल्टे सीधे दिन हो जाए उसके ऊपर वैलेंटाइन टाइम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो दिन जो गैर मुस्लिमों के हैं उन दिनों में हम खुशियां मनाएं और ईद हमें बोरिंग लगे। ईद किसकी वजह से हम मनाते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये दिया है, अल्लाह की दी हुई चीज, उसका दिया हुआ तोहफा हमें पसंद नहीं आए, और जो इधर उधर के फजूलियात हैं उनके अंदर हम बहुत खुशियां मनाएं और बहुत खुश हों, ये तो सही बात नहीं है। ईद का लफ्ज जब जहन में आए तो ये आना चाहिए कि ये खुशी मुझे मेरे रब ने दी है। अब आपके दिल में अल्लाह ताला की जो इज्जत है, तकरीम है, तो उसके बाद आपको वो दिन भी अच्छा लगेगा जो आपके रब ने आपको दिया है। बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम मुल्कों में जो रहते हैं वो ईद के दिन छुट्टी ही नहीं करते, क्या फायदा, हमारी छुट्टी भी वेस्ट होगी। ईद के दिन वो काम पे चले जाते हैं, उनके बच्चे स्कूल से चले जाते हैं, या हम अपनी वेकेशन क्यों ज़ाया करें? क्योंकि और ईद पे क्या करें, कुछ करने को है नहीं। कुछ अगर करने को नहीं है तो आप उसको स्पेशल बनाइए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने दिन आपको दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अय्याम जो ईद के हैं ना, ये खाने पीने के हैं, बाहम खुशी करने के हैं और अल्लाह को याद करने के। तो तीन चीजें फरमाई, खाना पीना इसमें करें, खुशी मनाएं, अल्लाह को याद करें। इसीलिए इन दिनों के अंदर आप कोई देखते हैं कि दफ भी बजाई गई और हबशियों ने तमाशा भी दिखाया, इस तरह की चीज, खेल वगैरह भी आप खेल सकते हैं। तो आपको अल्लाह ताला ने ये दिन दिए, अल्लाह की तरफ से है ये, कि आप इन दिनों में खाएं पिए भी, यानी रोजा रखना इसमें बिल्कुल हराम है। हाँ, ईद के अगले दिन से बेशक आप, सेकंड शव्वाल से बेशक आप शव्वाल के रोजे रख सकते हैं, लेकिन ईद के दिन जो फर्स्ट शव्वाल है उस पे आपने रोजा नहीं रख सकता, कोई भी किसी किस्म का रोजा नहीं रखा जा सकता। और खुशी करनी है, और किस लिए खुश होना है, कि ये दिन अल्लाह ने मुझे खुशी करने को फरमाया तो मैं खुशी करूंगी, ठीक है, और अल्लाह ताला को याद भी करना है कि दिन का स्टार्ट ही अल्लाह ताला की याद से, क्योंकि आपको पता है कि इस दिन के अंदर जो सुन्नत है वो क्या है, तकबीरात। जो ही आप शव्वाल का चांद देख लेते हैं उस वक्त से आपने तकबीरात पढ़नी शुरू कर देनी। अब आप चाहे मेहंदी लगा रही हैं, आप चाहे घर को साफ सुथरा कर रही हैं, ईद की तैयारी कर रही हैं, साथ साथ तकबीरात पढ़ते जाएं। और कब तक पढ़ते जाना है? जब तक इमाम खुतबे से फारिग ना हो जाए। ये ईद उल फितर की मैं बात कर रही हूँ, जब तक इमाम खुतबे से फारिग ना हो जाए। और गुसल करें ईद के दिन, अच्छे कपड़े पहने। मगर खवातीन, जैसे मैंने अभी आपको वो औरत की मिसाल दी है कि जिसने अपना सूत काटा और उसके बाद अपने हाथ से सारा खोल दिया, उस तरह से ना करें कि जर्क बर्क लिबास पहन के फुल मेकअप करके आज ईद का दिन है इसलिए जो है ना मैं खूब जेब जीनत करके जाऊंगी। नहीं, आपने यानी दिन का आगाज ही किससे किया? मुंह से आप कह रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर। तो अब मुझे बताएं अल्लाह अकबर कैसे आपने उसको समझा जब आपने अपनी मर्जी को अकबर बना लिया? आपका दिल चाहता है तो आपने ये कपड़े पहने, आपका दिल चाहता है तो आपने जेब जीनत की। तब अल्लाह अकबर नहीं है क्या कि जिस वक्त आप अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ रहे हैं तब नहीं याद है कि अल्लाह अकबर है, मेरी खुशी अकबर नहीं है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये ना हो कि हम ईद की नमाज के लिए जाएं और उल्टा अपने ऊपर गुनाह लेकर आ जाएं। हम कितनी नजरों के अंदर आएं और अपने लिए उल्टे अजर कमाने की बजाय कैसे लौट रहे हैं अल्लाह की नाराजगी के साथ, अल्लाह ना करे। तो पूरे अपने पर्दे का एहतमाम करके जाइए। आप घर में आके तैयार भी हों, खुशी भी करें, मेकअप भी करें, लेकिन ईदगाह जाते वक्त इस तरह की हाल हुलिये के अंदर ना जाए कि गैर महरम की नजरें पड़े और उनकी भी नजरें खराब हों और वो भी गुनाहगार हों और आप भी हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर की नमाज थोड़ी देर से पढ़ते थे और ईद उल अजहा की नमाज थोड़ी जल्दी पढ़ते थे, और खुशबू लगा के जाते थे। मगर औरतें ना खुशबू लगाएं, मर्द खुशबू लगाएं। आप अपने शोहर को, अपने बेटों को खुशबू लगा के भेज सकती हैं, जैसे आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा लगाती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और तकबीरात कहते हुए जाएं और घर से ईद उल फितर में घर से कुछ खा के जाएं, ईद उल अजहा में बगैर खाए जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? सुन्नत भी पूरी कर लें तो आपको अजर और मिल जाएगा कि जब ईदगाह जाने से पहले ईद उल फितर के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक अदद में ऑड नंबर में खजूरें खाते थे, एक या तीन या पांच। ठीक है, तो ईदगाह एक रास्ते से जाते थे और दूसरे से वापस आते थे, ये भी सुन्नत है। इस तरह औरतें जरूर जाएं, औरतें चाहे वो हैज की हालत में, उन्होंने नमाज नहीं भी पढ़नी तो मुसलमानों के इज्तमा को देखें, उनकी दुआ में शरीक हों। और ईद की नमाज से पहले पहले मैं आप मेक श्योर कर लें कि आपने सदका फितर यानी फितराना अदा कर लिया तो वो अदा कर लें, वरना ये उसके बाद आम सदका होगा, फितराना नहीं होगा। ईद की नमाज में ना इकामत होती है, ना अजान होती है, और इसका खुतबा नमाज के बाद होता है। ना इससे पहले कोई नफल होते हैं, ना इसके बाद कोई नफल होते हैं। और इसका तरीका, आसान तरीका जो अलामा अल्बानी ने जिसको हसन करार दिया इस हदीस को, कि पहली रकत में आप तकबीर तहरीमा जब कहते हैं अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू करते हैं ना, उसके बाद 7 तकबीरात कहनी है, और फिर सूरह फातिहा स्टार्ट करेंगे, और दूसरी रकत के अंदर 5 तकबीरात कहनी है। तो टोटल पूरी नमाज 2 रकत है और इसके अंदर पूरी टोटल शुरू से आखिर तक 13 तकबीरात हो गई। ठीक है, एक स्टार्ट की जो आप हमेशा पढ़ते ही हैं, उसके अलावा 7 फर्स्ट रकत में, तो ये टोटल और 8 हो गई, और सेकंड रका में आप 5 तकबीरात पढ़ेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है। हाँ, बाज कोई और तरीके से भी पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला तरीका चूंकि बहुत ही आसान है तो कोशिश करें कि अगर इसी तरीके से आप पढ़ लें, और ये हदीस भी हसन दर्जे की है, तो इसके ऊपर अमल करने से आपको सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। और ज़रूर जाएं, मर्द औरतें बच्चे सब जाएं और ईद की नमाज ज़रूर अदा करें। तो अल्लाह ताला खुशियों के दिन हमें दिखाए, और अल्लाह ताला इसी तरह बहुत सारी ईदें हम सबको नसीब करें।